त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, बलगोविंदसिहामणि, किरणकलावरुणचरणनः किरणं, विमलयरणेमिचन्दं, त्रिभुवनचन्दं नमंसामि। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है और उसकी हिंदी टीका हम पढ़ रहे हैं और उस अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 61 पर, 61 और 68 नंबर की हम गाथा पढ़ने जा रहे हैं। देखो हमने अभी तक क्या देखा उसको जरा याद करके आगे बढ़ेंगे। संख्याओं की बात चल रही थी। आप ये कुंड बिंड बनाए तभी थे क्या? अच्छा, वो हुआ था जगन्य परिता संख्या। फिर उसके बाद हमने वो संख्यात असंख्यात आनंद के कुछ भेद देखे थे। अब ये 14 धाराएं बताई हैं। 14 धाराएं ने वो जो सिक्वेंस जैसे हमारे पहाड़े होते हैं वैसे उस टाइप से एक एक से बढ़ते हुए वो सर्वधारा कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5 अंतिम स्थान है केवल ज्ञान। दूसरी है समधारा, ओनली इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ सम संख्या। अच्छा समय समझते हैं। अच्छा हाँ, वो तो केवल ज्ञान उसका अंतिम स्थान। विषम धारा में विषम ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 वगैरह अंतिम कौन सा आएगा? -1। वो तो समय इवन नंबर है ना, तो उसमें से उसे एक्सीड नहीं कर सकते, -1। ये तीन धारा हो गए। अब उसके बाद ये है कृति धारा यानी वर्ग धारा। नहीं जिसका वर्ग होता नहीं, जो वर्ग रूप संख्या है उसको ही लेना है। एक है, एक का वर्ग एक है ना, एक है वो वर्ग स्थान है। वर्ग वर्ग को लेना है, 2 का वर्ग 4, 4 को लेना, 3 का वर्ग 9, 9 को लेना, हाँ 4 का वर्ग 16, 16 को लेना। यानी हम उस धारा में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 36 लिखेंगे, 49 लिखेंगे, इस तरह 68 लिखेंगे, 81, 64, 64, 81 और 100 और आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अंतिम स्थान होगा केवल ज्ञान, वो भी वर्ग रूप संख्या है। तो ये हो गई वर्ग धारा। अब ये वर्ग धारा को हटाओ, बाकी जो बचेगा बीच बीच वाले फिगर्स वो सारे अवर्ग धारा, अकृति धारा। दो कृति है, नहीं कृति का अर्थ ही होता है वर्ग, वर्ग के लिए कृति शब्द आता है इसके अंदर, उसको कृति धारा कहेंगे। अकृति धारा में कौन सी? 2 है, 3 है।
दो का वर्ग भी कार्य होता है,
दो का वर्ग होता है, वो मातृक में लेंगे।
वर्ग में नहीं है।
जो वर्ग नहीं है, जो संख्या वर्ग रूप नहीं है उसको लेना। तो 2 को लिया, 3 को लिया, फिर 5, 6, 7, 8
वर्गमूल ही बोलते
हैं। नहीं वो अलग, वर्गमूल बात अलग है। अकृति में जो वर्ग रूप, जो संख्या इटसेल्फ वर्ग रूप नहीं है, यानी जो किसी का वर्ग नहीं है ऐसी संख्या, तो ये हो गई अकृति धारा। फिर घन धारा, इसमें केवल जिसका घन नहीं, जो जो घन रूप संख्या है उसको लेना। एक का घन एक है उसको लेना, एक को लेना। अकृति धारा में हाँ वही केवल ज्ञान -1, क्योंकि वो कृति में वो वर्ग रूप संख्या में हमने केवल ज्ञान को लिया था। अब घन धारा में केवल मात्र घन घन संख्या है, एक ये घन रूप संख्या है, 9 नहीं होता है, 2 का घन 8 होता है, वो 9 वो वर्ग था 3 का, अभी हमको घन लेना है, तो 1 को लेना 8 को लेना, 3 का घन 27 होगा, 27 को कंसिडर करना, 4 का घन 64 होता है उसको लेना, इस तरह से पांच का घन 125 होगा, तो इस तरह से घन संख्या लेना। तो केवल ज्ञान तो घन रूप नहीं है, केवल ज्ञान का आधा प्रमाण है वो घन रूप है, आधा आधी आधी बात, यानी केवल ज्ञान डिवाइडेड बाय टू ये घन रूप संख्या है। वो कैसे उन्होंने सिद्ध किया सारा, परंतु दैट इज नॉट द अंतिम घन, लास्ट घन है, उसके आगे भी कुछ घन रूप संख्या है। वो कैसे निकालना, तो उन्होंने ये केवल ज्ञान के आधा है ना, वो घन रूप संख्या है, उसका घन मूल निकालो और उसके आगे जितने संख्याओं का घन हो सकता है ऐसी संख्या उसमें ऐड करो और फिर उसका घन निकालो, तो इसको आसन्न घन कहते हैं, यानी अंतिम जो कोई घन रूप संख्या होगी तो वो सारे घन धारा में आते हैं। अघन धारा जो घन रूप संख्या नहीं है, घन होता है वो मातृक में आता है। हम घन या अघन इतनी बात लें, जो संख्या इटसेल्फ घन नहीं है, दो संख्या घन नहीं है, तीन संख्या घन नहीं किसी का, चार संख्या, पांच संख्या, छह संख्या नहीं है, सात संख्या, आठ वो घन है दो का, तो वो घन धारा में गई, और दो तीन चार पांच छह सात अघन धारा में आ गई। आठ को घन धारा में रखा, नौ दस ग्यारह बारह वो सब अघन धारा में आएगी, इस तरह से लेना। अघन का लास्ट तो केवल ज्ञान है, क्योंकि वो घन रूप संख्या नहीं है। यहाँ तक हो गई धारा है। अब उसके बाद वर्ग मातृक या कृति मातृक, मातृक यानी जिनका वर्ग हो सकता है, किसका वर्ग हो सकता है, एक का दो का तीन का सबका हो सकता है, और किसका कहाँ तक होगा, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक का वर्ग हो सकता है, क्योंकि वर्गमूल का वर्ग क्या है, तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के वर्गमूल का वर्ग करो तो वापस केवल ज्ञान आएगा ना। हाँ, केवल ज्ञान के वर्गमूल एक ऐड कर दो, उसका वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ी संख्या हो जाएगी केवल ज्ञान से, इसलिए उसको वर्ग में नहीं लेना। तो इसको कृति, उसकी कोई बड़ी है ही नहीं, इसीलिए उसको पास नहीं कर सकते हम। तो केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक के सभी संख्याओं को, एक से लेकर वहां तक की, उसके वर्ग हो सकते, इसलिए उसको कहेंगे वर्ग मातृक या कृति मातृक। माता यानी माता जैसे जन्म लेती है, ऐसे ये इनका वर्ग हो सकता है, इनसे वो वर्ग वाली संख्या निकलती है। इसलिए एक से लेकर केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक की कंटिन्यूस लगातार जो संख्या है, उन सबको वर्ग मातृक या कृति मातृक धारा कहेंगे। वो संख्यात में, इनमें इस धाराओं में लेना उसको कृति मात्र को। अभी केवल ज्ञान का वर्गमूल प्लस वन प्लस टू प्लस अंतिम केवल ज्ञान तक, इन किसी के भी वर्ग हो नहीं सकते, तो वो अकृति मातृक धारा हो, क्योंकि उनका वर्ग नहीं कर सकते। अब घन मातृक जिनका घन हो सकता है, तो कहां तक की, एक दो तीन चार पांच छह कहां तक, वो जो अंतिम घन हो ना उसका घनमूल, जिसको आसन्न घनमूल कहते हैं, वहां तक की सभी संख्याएं ले, और उसके आगे जो बढ़ती हुई केवल ज्ञान तक सभी क्या है, अघन मातृक। यहां तक की धाराएं होगी ना, कितनी हुई, पहली सर्वधारा ली थी सम विषम, वर्ग अवर्ग धारा अवर्ग धारा, यानी कृति धारा कृति धारा, घन धारा अघन धारा, वर्ग मातृक या कृति मातृक अकृति मातृक, घन मातृक अघन मातृक, ये कितनी हुई, 11 हुई। अभी 12 13 14 ही धारा है ना। हाँ, तो अभी सारे द्विरूप वाली यानी वर्गों की धाराएं हैं, जो आपने बहुत बार सुनी है, द्विरूप वर्ग धारा, दो का वर्ग चार ये उसका पहला स्थान है, फिर चार का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग, इस तरह से आगे आगे जाएगी गाड़ी, इसको कहेंगे द्विरूप वर्ग धारा। अब उसी के बाद यहाँ चल रही है, तो ये हमने ये 60 पेज पर पढ़ा था कि इसका पहला स्थान है चार, इसका पहला स्थान चार है, दूसरा है 16, तीसरा है 256, जो जिस स्थान पर है ना उसको कहेंगे उसकी वर्गशाला, इस तरह से ये संख्या उन्होंने बताई थी, यानी पीछे पीछे की संख्याओं के आगे आगे संख्या उसके वर्ग होते हैं। इसमें ये बात आई कि इसी वर्ग धारा में आगे चलकर कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स बताने वाले हैं। जघन्य परिता संख्यात नाम सुना है आपने, है ना, वो भी इसी धारा में आती है, द्विरूप वर्ग धारा में ये जगन्य परिता संख्या संख्या भी आती है, तो उसकी वर्गशाला का यानी कौन से वर्ग स्थान पर होगी वो, तो वो तो पहला मिनिमम असंख्यात है तो उसके वर्ग स्थान तो संख्यात होगा, एक कहा था उन्होंने, उसके अर्धच्छेद भी संख्यात हो गए और उसका वर्गमूल भी संख्यात ही होगा क्योंकि उसका वर्ग करने पर वो मिनिमम असंख्यात आया था, तो उसके पहले वाली जो फिगर है वो भी संख्यात होगी। उसके बाद हमने ये बात देखी थी कि जघन्य परिता संख्यात को जघन्य परिता संख्यात बार आपस में गुणा करने पर जघन्य युक्ता संख्यात आता है, तो कहते हैं कि देखो कल 61 पेज पर यानी जघन्य युक्ता संख्यात यानी जिसको आवली कहते हैं, जघन्य परिता संख्यात है ना, वह ये द्विरूप वर्ग धारा में आए, उसके आगे वो धारा कैसी चलेगी, उसका वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग, ऐसे संख्यात स्थान आगे जाने पर जघन्य युक्ता संख्यात आएगा, वो द्विरूप वर्ग धारा जिसको हम आवली कहते हैं, आवली का वर्ग कहेंगे तो इसको प्रतरावली कहेंगे, उसी का अर्थ है जघन्य असंख्याता संख्यात, वो भी इसी धारा में क्योंकि उसका वर्ग है, तो हमें ये जघन्य परिता संख्यात भी इसी धारा में है, वो आवली भी इसी धारा में है, प्रतरावली भी इसी धारा में, ये तो बातें वहां तक हुई थी हमारी। परंतु जैसे हमने ये देखा था जघन्य परिता संख्यात की वर्गशाला का जो है कौन से स्थान पर है, वो राशि भी इस द्विरूप वर्ग धारा में आती है, उसके जितने अर्धच्छेद है, जैसे पनट्टी के अर्धच्छेद 16 होते हैं, 16 के अर्धच्छेद हमने देखे थे 4 होते हैं, 4 का अर्धच्छेद 2 होते हैं, तो उस राशि के अर्धच्छेद भी इसी द्विरूप वर्ग धारा में कहीं आगे आते हैं, उसका वर्गमूल भी नेचुरल इसी धारा में आता है, ऐसे आवली के जो है वर्गशाला का वो इस धारा में नहीं आती, आवली आती है पर उसके वर्गशाला का नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल हमारी धारा में 4 है, 16 है, 256 है, 256 तीसरे स्थान पर है, उसकी वर्गशाला का 3 है, तो क्या वो वर्गशाला का द्विरूप वर्ग धारा में आती है, नहीं आती। 256 के अर्धच्छेद कितने हैं, 8 है, वो भी द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती, पर 256 द्विरूप वर्ग धारा में आती है, परंतु 256 का नेक्स्ट स्थान है जो है पनट्टी 65536, उसकी वर्गशाला का 4 है, वो इस धारा में आती है, उसके अर्धच्छेद 16 है, वो इस धारा में आते हैं, उसका वर्गमूल तो नेचुरली आना ही इस धारा में, तो ऐसा क्यों, तो उन्होंने उसके लिए जो कुछ विशेष बातें बताई जो ऑड नंबर पर आते आती बातें उसने हो ही थी अपनी, तो उसमें उन्होंने उसका उदाहरण सॉरी कारण भी बताया था। 61 पेज पर आना, सेकंड लाइन देखो, इससे संख्या स्थान आगे जाकर यानी किसके आगे, जघन्य परिता संख्या जो राशि है उसके आगे संख्यात स्थान जाकर, उसका अर्थ है संख्यात बार वर्ग का वर्ग करने पर जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण आवली की उत्पत्ति होती है। अब उन्होंने एक यहाँ नियम बताया है कि जो राशि विरलन और देय के विधान से उत्पन्न होती है, क्योंकि जघन्य युक्ता संख्यात यानी आवली कैसे उत्पन्न होगी, तो जघन्य परिता संख्यात को विरलन किया और जघन्य परिता संख्यात को देय दिया और आपस में गुणा किया तब आवली हुई है। ऐसी जो जो राशियां उत्पन्न होती है विरलन और देय देकर, उस राशि की वर्गशाला का अर्धच्छेद उस धारा में नहीं मिलते, ये रूल है। हमारी 256 राशि भी कैसी आई थी, 4 का विरलन और 4 का देय करने से आई थी, तो उसके अर्धच्छेद और उसकी वर्गशाला का इस धारा में नहीं आएगी, ये नियम बताया उन्होंने। गाथा 73 के इस नियम के अनुसार इस द्विरूप वर्ग धारा में आवली की उत्पत्ति तो होती है, किंतु आवली की वर्गशाला का है और अर्धच्छेद राशियों की उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति नहीं होती ना, वो इस द्विरूप वर्ग धारा में नहीं पाए जाते। फिर ये शंका भी पूछी थी, संख्यात स्थान क्यों कहा आगे असंख्यात होने चाहिए, क्योंकि जघन्य परिता संख्यात को जघन्य परिता संख्यात बार आपस में गुणा किया था, परंतु वो यहाँ हम कह रहे वर्ग करो वर्ग का वर्ग करो वर्ग का वर्ग करो, उसको तो हमने जघन्य परिता संख्यात बार लिखा था, वर्ग के वर्ग वर्ग के वर्ग तो संख्यात बार ही हो गए उसके। ये फिर पढ़ना है? हाँ देखो देखो फिर से ये शंका फिर पढ़ेंगे। शंका पढ़नी, संख्यात स्थान आगे जाकर आवली उत्पन्न होती, इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि हमें तो लगता है असंख्यात स्थान जाना चाहिए आगे, क्योंकि जघन्य परिता संख्यात को जघन्य परिता संख्यात बार आपस में गुणा करना है। तो कहते हैं देय राशि के ऊपर समाधान उसका, विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद हो उतने वर्ग स्थान आगे जाकर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ जघन्य परिता संख्यात का विरलन किया है और जघन्य परिता संख्यात ही दे दिया है, तो उसके जितने अर्धच्छेद है, जैसे आपको सादी भाषा में समझाना है, पहले हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं फिर यहाँ की बात पढ़ेंगे, क्योंकि वो परिता संख्यात को ख्याल में लेना मुश्किल है। हमारे पास देय राशि से, देय और विरलन से जो राशि उत्पन्न होती है हमें मालूम है 256 है, तो वो विरलन राशि भी 4 है और देय राशि भी 4 है, तो हमें ये निकालना है कि ये विरलन और देय करके जो आगे की राशि उत्पन्न होगी कौन सी, तो पनट्ठी है, 4 को 4 बार नहीं नहीं 256 है, हाँ सॉरी 256 है, तो कितने स्थान आगे जाकर ये उत्पन्न होगी ये अपना प्रश्न है। विरलन है 4 और देय है 4, अब विरलन 4 का अर्धच्छेद निकालना है 2, तो 2 स्थान आगे जाकर यहाँ क्या लिखा देखो, देय राशि के ऊपर विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद हो उतने वर्ग स्थान आगे जाकर, ये दोनों ही देय और हाँ दो ही स्थान आगे गए। अब यहाँ दोनों ही समान राशि है जे 4 और 4, हम ऐसी भी बात दे सकते हैं ना, अन्य बात भी ले सकते हैं इसमें कि 4 का अधिक बार भी गुणा करेंगे ना हम, 4 4 4 4 4 4 6 बार लेते ऐसी, परंतु इस धारा में होनी चाहिए ना बात, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। वो मान लेते हमारी विरलन राशि 4 है और देय राशि 2 ही है, ऐसा भी हो सकता है ना, विरलन राशि 4 है, हमने 4 को विरलन किया और उसके ऊपर देय राशि 2 रखा, ये तो बात ख्याल में आई, ये हमको ये रूल फिट करना है, इसलिए थोड़ा हम इमेजिन करके देखते हैं। तो कहते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 16। तो ये जो स्थान है 4 का विरलन करो और 2 को देय दे दो, तो जो संख्या आएगी वो कितने स्थान आगे जाके आएगी, तो कहते हैं कि इसका तीसरे स्थान पर आएगी, नहीं समझे, परंतु ये विरलन राशि 1 देखो यहाँ विरलन राशि 4 है, 4 के अर्धच्छेद होते हैं 2, वो तो अभी बताया था, पर यहाँ मैं अलग विरलन और अलग देय देके देखना चाहती थी। ना 2 के आगे उतने स्थान चले जाएगी ना, दो के आगे और दो स्थान गए तो चार और सोलह दो स्थान आ ही गए। ये वो सारी राशि वो तो द्विरूप वर्ग धारा में से लेनी है, इसलिए अपना वो फिट नहीं बैठना, क्योंकि दो और चार और सोलह ऐसा लिखते हैं हम तो वो दो स्थान आगे चलकर आती है वो राशि, यानी वो घटित हो रहा है परंतु हमें बड़ी संख्या लेनी चाहिए। यहाँ तो हम चार ही देय और चार ही विरलन पकड़ते हैं तो ठीक है, परंतु विरलन अन्य और देय अन्य से भी कुछ राशियां उत्पन्न होती, उसमें भी यही फॉर्मूला फिट होता है, ये कहना चाहते। अभी इसको पढ़ेंगे, देखो यह है ऐसा ही रखे हम उसको पढ़ेंगे। समाधान, देय राशि के ऊपर, यानी जो देय राशि हम ऊपर देके विरलन कर रहे हैं उसके ऊपर विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद हो उतने वर्गस्थान आगे जाकर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है। हमारी देय राशि जगन्य परिता संख्या, उसी को हमने विरलन किया था, तो उस विरलन के अर्धच्छेद निकालो वो संख्यात होते हैं, तो जगन परिता संख्यात के आगे पर संख्यात स्थान जाने पर वो देय विरलन से उत्पन्न होने वाली जो राशि है जगन युक्ता संख्यात वो आएगी, यही कहना चाहते। अर्थात जगन्य परिता संख्यात का विरलन कर जगन्य परिता संख्यात ही देय देने पर विरलन राशि यानी जगन्य परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है, यहाँ एक जगन्य शब्द डालो, जगन्य परिता संख्यात से उतने वर्गस्थान आगे जाकर आवली उत्पन्न होती है, यानी वो संख्यात ही वर्गस्थान हो गए, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद संख्यात ही हो गए, क्योंकि वो मिनिमम असंख्यात है, उसके पहले वाली सभी संख्याएं संख्यात में आ जाती है। अथवा जगन ऊपर से तीसरी लाइन जितने अर्धच्छेद है परिता संख्यात से उतने वर्गस्थान आगे जाकर, यानी जगन्य परिता संख्यात से उतने वर्गस्थान आगे जाकर, जैसे मिला नहीं, अथवा 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 पढ़ा क्या हमने, अथवा जगन्य परिता संख्यात का विरलन कर जगन्य परिता संख्यात ही देय देकर परस्पर गुणा करने से जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण आवली उत्पन्न होती है, यानी जगन्य युक्ता संख्यात की जितनी संख्या है उतने समयों की एक आवली होती है। जैसे अब यहाँ ये संदृष्टि लेकर समझा रहे, यहाँ विवक्षित राशि 256 है, विरलन राशि 4, विरलन राशि के अर्धच्छेद 2 और देय राशि 4 है, अतः 4 का विरलन किया और उसके ऊपर 4 ही देय दिया, विरलन राशि के अर्धच्छेद 2 है इसलिए दो वर्गस्थान, क्योंकि पहला वर्गस्थान 16 है और दूसरा वर्गस्थान 256 है, आगे जाकर विवक्षित राशि 256 की प्राप्ति हो जाएगी, यानी 4 के आगे दो वर्गस्थान गए ना, दूसरे वर्गस्थान में 256 आ जाएगा। अथवा 4 का विरलन कर उस पर 4 ही देय देकर परस्पर में गुणा करने से भी विवक्षित राशि 256 की उत्पत्ति हो जाएगी, ये तो हमने पहले ही देखा था, यहाँ तक हमारा कल तक का हो गया था, आपके लिए पूरी सब धाराएं हम देखी यहाँ पर, आगे बढ़ते
ऊपर जो रूल बताया है।
आपका प्रश्न क्या है?
विरलन और देय राशि,
विरलन और देय, हाँ,
जो राशि उत्पन्न होती है वो जो विरूप वर्ग धारा में आता है तो उनकी अर्धच्छेद और वर्गशाला का विरूप वर्ग धारा में नहीं आता,
हाँ, आवली की नहीं आ रही,
नहीं आ रही,
हाँ,
तो यहाँ पे जो विरलन और देय के जो राशि उत्पन्न होती है वो विरूप वर्ग धारा में आती है, वो कौन सी होगी?
जैसे 256 है,
पर उसके लिए कोई नियम नहीं बताया,
नहीं नहीं बताएंगे, उसका भी नियम होगा ना कोई, यानी जिसकी वर्गशाला का ऑड होती है ये भी आ जाएगा उसके अंदर, और
क्योंकि नियम तो बता दिया, पर विरलन और देय के रूप से जो राशि उत्पन्न होती है
आएगी ना, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई ना, अभी तो उसके सारे ही हाँ उस संबंधी जो नियम है ना वो बताएंगे। यानी विरलन और देय से उत्पन्न होने वाली राशियों के वो नहीं मिलेंगे, तो हमें देखना है कौन सी राशि विरलन और देव से उत्पन्न होती है। फॉर्मूला यही है, विरलन और देव से उत्पन्न होने वाली राशि। देखो अभी हम 68 नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा उसी की रिवीजन हुई अभी तक हमारे। इस आवली का एक बार वर्ग करने से प्रत्रावली की उत्पत्ति होती है। आवली तक तो हमने पढ़ा ना, उसके आगे बता रहे हैं। गमीय संखम ठाणम वग्गसलद्धच्छिदीय पदम पदम पल्लम चसूय अंगुल पदरम जगसेडिगण मूलम गत्वा असंख्यम स्थानम वर्गशलार्धच्छिदिश्च प्रथम पदम पल्यम चसुचंगुलम प्रतरम जगश्रेणिगण मूलम। इसमें इसी वर्गधारा में कौन सी चल रही है वर्गधारा? द्विरूप वर्गधारा। पहले में दो से शुरू किया, यानी दो के वर्ग से शुरू किया, चार हमारा पहला स्थान था। आगे बढ़ते बढ़ते पनठी, फिर बाधार, फिर इकट्ठी करते करते हमने बीच में कुछ संख्याएं देखी थी, जगन्य परिता संख्या देखी, और उसके पहले में कुछ उसके वर्गशाला का अर्धच्छेद वर्गमूल वगैरह आएंगे। आगे चलकर आवली भी इसी राशि धारा में आती है, प्रत्रावली भी इसी धारा में आती है, ये हमने बातें देखी थी। अब इसके आगे कुछ स्थान चले जाने पर और कौन कौन सी हमें जो मालूम है नाम वो संख्या आएगी वो बता रहे। हमने पढ़े गाथा में, फिर भी अभी हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको और ख्याल में आएगा। गमियम असंख्यम ठाणे ने असंख्य स्थान आगे जाने पर, देखो अभी हम डायरेक्ट 62 नंबर के पृष्ठ पर देखते हैं। प्रतरावली से असंख्यात स्थान आगे जाकर, प्रतरावली का अर्थ होता है जघन्य असंख्याता संख्यात, क्योंकि आवली ने जघन्य युक्ता संख्यात है और प्रतरावली ने जघन्य असंख्याता संख्यात। उसके कितने स्थान आगे जाना है? तो असंख्यात स्थान आगे जाकर, तो इमेजिन कर सकते हैं वो कितना बड़ा असंख्यात होगा। अद्धा पल्य की वर्गशाला का है, अभी तो उसकी वर्गशाला का आई, यानी इतने समझ में आती बात। संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परिता संख्यात की वर्गशाला का आई, फिर जघन्य परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद उतरे और आगे स्थान जाने पर आवली आई, और एक आगे स्थान जाने पर प्रत्रावली आई थी। उसके असंख्यात वर्ग स्थान आगे चलने पर पल्ले नहीं आता है, अद्धा पल्ले की वर्गशाला का आती है, यानी पल्ले का जो वर्गशाला का जो संख्या है वही असंख्यात भी है, बहुत बड़ी असंख्यात। ख्याल में आई यहां तक बात? यानी ये भी कितने आगे, प्रत्रावली से भी असंख्य, प्रत्रावली को भी असंख्यात बार वर्ग 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 करने पर अद्धा पल्ले की वर्गशाला का राशि आई, वो इसी द्विरूप वर्गधारा में आती है। उसके बाद और कितने ही स्थान आगे जाने के बाद अर्धच्छेद राशि आई, अद्धा पल्ले ने पल्ले। देखो हम जो वो गड्ढा करते हैं रोमखंडों से भरते हैं वो उसको कहेंगे व्यवहार पल्ले। उसको असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों से गुणा करेंगे तो जो रोम संख्या आएगी वो है उद्धार पल्ले, और उसको असंख्यात वर्षों के समयों से गुणा करेंगे तो जाए आके वो अद्धा पल्ले है, उसके समयों की संख्या थी। तो ये अद्धा पल्ले नाम का जो असंख्यात है उसकी वर्गशाला का कितनी है? तो इतनी बड़ी असंख्यात तो उसकी वर्गशाला का है। उसके कितने ही स्थान आगे जाने पर उसके अर्धच्छेद राशि आ जाएगी, और उसी के कितने आगे स्थान जाने पर उसका पहला प्रथम मूल भी मिलेगा, और एक स्थान आगे जाके पल्ले मिलेगा। पल्ले को हो या अद्धा पल्ले को, द्विरूप वर्ग धारा में तो अद्धा पल्ले ही आता है। फिर से पढ़ते गाथा। प्रतरावली से असंख्यात स्थान आगे जाकर अद्धा पल्ले की वर्गशाला का है अर्धच्छेद, ये पल्ले के अर्धच्छेद, और पल्ले का प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है। हमने हमेशा इसकी संदृष्टि बनाई थी, ये पल्ले के वर्गशाला का को व कहा था, पल्ले के अर्धच्छेदों को छे कहा था, और उसका प्रथम वर्गमूल तो ठीक है समझ में आया। इसके आगे नेक्स्ट स्थान क्या होगा? पल्ले। सुचंगुल प्रत्रांगुल और जगत श्रेणी का प्रथम घनमूल प्राप्त होता है। क्या कहते हैं घनमूल कहा जगत श्रेणी का, क्योंकि इसका घन है वो द्विरूप घन धारा में मिलेगा बाद में, और घन का घन जो लोक है वो घनाघन धारा में मिलेगा, इसलिए यहाँ जगत श्रेणी का घनमूल लिया। ख्याल में आती बस जगत श्रेणी नेक्स्ट धारा में आएगी, ये द्विरूप वर्ग धारा चल रही है, आगे की धारा की अभी हमने बात नहीं पढ़ी है, वो आएगी तब उसकी चर्चा अधिक होगी। देखो यहाँ तो अभी आगे चलकर शायद बताएंगे, हमने देखो क्या देखा था, पहले द्विरूप वर्ग धारा शुरू हुई, जगन परिता संख्यात राशि आई थी संख्यात वर्ग स्थान जाने पर, उसके आगे और संख्यात स्थान जाने पर आवली आई, आवली का एक स्थान आगे जाने पर प्रत्रावली आई, प्रत्रावली के आगे जाने ने वर्ग का वर्ग करते रहना उसका, कितने अभी असंख्यात स्थान जाने के बाद उस स्थान पर पहले वर्गशाला का आएगी, यानी पल्ले की वर्गशाला का भी इतना बड़ा असंख्यात है ये कहना चाहते हैं। उसके बाद और कितने स्थान जाने पर उसकी अर्धच्छेद आ जाएगी, वर्गशाला का ही असंख्यात है तो अर्धच्छेद भी आगे असंख्यात जाएंगे, क्योंकि अर्धच्छेद के अर्धच्छेद को ही वर्गशाला का आती है, नहीं समझे, चार का अर्धच्छेद दो, सोलह का चार, 256 का आठ, पनट्टी का सोलह, सोलह का अर्धच्छेद चार, तो पनट्टी की वर्गशाला का
चार,
तो यहाँ हमने देखा वहां तो चार थी, समझ में आती है बात, तो चार से सोलह तो चार गुना हो जाता है, तो ऐसे जो वर्गशाला का असंख्यात स्थान पर आए, वर्गशाला का ही उसकी जो क्या कहेंगे वैल्यू असंख्यात है, तो अर्धच्छेद की भी उसके कितने आगे चलकर आ जाएगी ये कहना चाहती हूँ मैं। नहीं नहीं वर्गशाला का को फिर वर्गशाला का बार दो को आपस में गुणा करना पड़ेगा तभी जाके अर्धच्छेद आएगा, अर्धच्छेद राशि आएगी, यानी वो भी असंख्यात स्थान बीच में चले जाएगी तब अर्धच्छेद राशि आएगी, और आगे असंख्यात स्थान जाने पर उसका प्रथम वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान आगे जाने पर पल्ले आएगा, यानी पल्ले में कितनी अधिक संख्या होगी इसको हम इमेजिन कर सकते हैं।
जिस स्थान पे जाने पे वर्गशाला का आएगी उतने ही स्थान जाने के पश्चात अभी आएगी,
नहीं 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 वो ऐसा नहीं कहेंगे हम, असंख्यात इतनी बात बता,
क्योंकि वर्गशाला का भी
उतने स्थान जाने पर अंगुल आएगा, दो वह स्थान पर अंगुल आता है, भूल गए आपने पूछा जितने वर्ग स्थान जाके वर्गशाला का पल्ले आया था क्या उतने ही आगे वर्गशाला का की बात करेंगे,
वर्गशाला का असंख्या जाने का पल्ले के वर्गशाला का उतने ही फर्दर दूसरे स्थान उतने ही चले जाएंगे
तो अंगुल आएगा, वही तो मैं कह रही हूँ, अंगुल की वर्गशाला का दो वह है, पल्ले की वर्गशाला का वह मानते हैं तो अंगुल की वर्गशाला का दो वह होती है।
अच्छा उतने स्थान जाने पर दो वह आएगा,
तो दो वह में अंगुल आएगा,
अंगुल आएगा
वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी है, ये बीच में आ जाएगी छोटी है इसे। देखो जैसे पनट्टी पर घटित करो आप, पनट्टी की वर्गशाला का कितनी है
चार,
चार। उसके अर्धच्छेद राशि
दो,
नहीं अर्धच्छेद तो पनट्टी के सोलह है,
तो वर्गशाला का कितने स्थान पर है पहले स्थान पर, चार संख्या पहले स्थान पर है द्विरूप वर्ग धारा में, चार संख्या जो पनट्टी की वर्गशाला का है वो चार संख्या द्विरूप वर्ग धारा में पहले प्रथम स्थान पर आती है, उसके अर्धच्छेद राशि द्वितीय स्थान पर आती है, चार के आगे उतने स्थान नहीं चले जाते, नहीं ख्याल में दो वो की अभी बात आई नहीं है, वो अंगुल की मुझे मालूम है इसलिए मैंने बताई आपको कि पल्ले का एक बार वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग आगे चलती जाएगी गाड़ी तो जो वह स्थान पर जो वर्गशाला का पल्ले की वर्गशाला का वह मानेंगे
उतने ही स्थान जाने
तो अंगुल की वर्गशाला का दो वह है, यानी जितने असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले आया था उतने ही असंख्यात स्थान जाने पर अंगुल आएगा। जरा देना पुस्तक को। हाँ ये 16-14 धारा है ना, इसकी बात हम देखते हैं। एक कुंड के बाद है ना धारा सारी द्विरूप वर्ग धारा। हाँ देखो जघन्य परिता संख्यात का वर्गमूल वगैरह ये प्रत्रावली है, प्रत्रावली तक हम भी आए थे। प्रत्रावली के आगे जो हमने अभी पढ़ा ना उसी को है यहाँ पर। असंख्यात स्थान जाने पर अद्धा पल्ले की वर्गशाला का राशि होती है, इससे असंख्यात स्थान जाने पर अद्धा पल्ले की अर्धच्छेद राशि होती है। मात्र असंख्यात कहा, उतने ही असंख्यात नहीं कहा, उतने असंख्यात जाते तो अंगुल आ जाता।
तो
इससे असंख्यात स्थान जाने पर अद्धा पल्ले का वर्गमूल है।
अंगुल की वर्गशाला का आगे होगी के पल्ले आगे होगा। अंगुल की वर्गशाला का है वो पहले आएगी कि पल्ले पहले आएगा
वर्गशाला का, वो तो दो वह है। अरे वर्ग वर्गशाला का जिस स्थान पर है आप ये प्रश्न ही गलत है। पल्ले की वर्गशाला को हमने वह माना, वो द्विरूप वर्ग धारा में किसी स्थान पर है, किसी स्थान पर है यानी आवली के आगे असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्गशाला का वह नाम की संख्या आती है। उसका एक बार वर्ग करो तो भी कितनी बड़ी संख्या होगी, और उसका केवल दो गुना करो तो कुछ नहीं है।
नहीं,
अरे उसके आगे नहीं क्लैरिफिकेशन की
क्योंकि मैंने क्यों पूछा, क्योंकि जितने स्थान जाने पर पल्ले आता है उतने ही फर्दर स्थान जाने पर अंगुल आता है।
हाँ।
तो यहाँ पे वर्गशाला का कब एक कुछ प्रमाण,
वर्गशाला का दो गुनी है, वर्गशाला का दो गुनी है। नहीं आपका समाधान नहीं हुआ है। 16 का वर्गशाला का दो है।
हाँ।
और पनटी की चार है।
हाँ।
तो दूसरे स्थान पर 16 है और चौथे स्थान पर पनटी है।
सो दो वर्ष से पल्य छोटा है।
हाँ?
दो वर्ष से पल्य छोटी संख्या है।
छोटी कैसी,
बड़ी होगी,
बहुत बड़ी है, आप नहीं समझे। देखो देखो हमारे पास चार ही संख्या ना, हम ज्यादा नहीं बता सकते। चार है, 16 है, 256 है, 58 है, आगे कुछ बादल इकट्ठी जो कुछ है। अब हमारे पास कंपैरिजन के लिए व और दो व लेना है हमको। 16 की वर्गशाला का व है यानी दो है, और इसकी वर्गशाला का दो व है यानी चार है। तो व है और व का वर्ग 256 है, दो व की वैल्यू कितनी होगी, 32। व इज इक्वल टू सॉरी
दो
व यानी चार, चार 16 को दो गुना नहीं करना है। व की वैल्यू दो है, दो व की वैल्यू चार है, तो ये व दूसरा स्थान है
और
ये 16 जो है ये वैसे ये जो वर्गशाला है ना 16 की वर्गशाला दो तो इसके पीछे चली जाती है, वो तो द्विरूप वर्गधारा में भी नहीं, वो तो और पीछे चली जाएगी। और प की वर्गशाला कहने उसकी वर्गशाला का चार है जिसकी वैल्यू हमने दो व कही, वो यहाँ पर आता है स्थान। अब यहाँ दो गुना दो है इसलिए यहाँ पर आ गया। आगे बढ़कर अगर हम कहते हैं, देखो मान लेते हैं असंख्यात स्थान चले गए, ये प यानी पल्ले है और उसकी वर्गशाला का व है, उसके असंख्यात असंख्यात स्थान जाने पर ये वर्गशाला का राशि कब आई, पल्ले के बहुत पहले आई थी।
ये पल्ले का वो नहीं है, वर्गशाला का नहीं।
देखो पल्ले की वर्गशाला का पहले कंसीडर करते, यानी हमारे असंख्या साथ जाने पर ये वो आया, वो का अर्थ होता है पल्ले की वर्गशाला का। उसके असंख्या स्थाने जाने पर पल्ले के अर्धच्छेद आए उसी द्विरूप धारा में, उसके आगे असंख्या जाने पर पल्ले का प्रथम वर्गमूल आया और उसके एक स्थान आगे पल्ले आया। ये चार फिगर्स हमने एक धारा में देखे, ये तो समझ में आती बात।
दो वो तो छह के पहले आ
जाएंगे, छह के क्या व के और व के वर्ग के, व का डबल करना है काली, व का वर्ग करो तो सेकंड उसकी आगे वाली फिगर आ जाएगी। और दो वो कहाँ का रह गया? यानी वह का नेक्स्ट वर्ग स्थान जो है उसका इस धारा में क्या आएगा? वह का वर्ग आएगा, वर्ग का वर्ग आएगा, वर्ग का वर्ग आएगा। दो वह राशि इस धारा में भी नहीं आएगी।
अच्छा, दो वह राशि
कैसे आएगी? और सूचंगुल ऐसे भी वो पर विरलन करके आने वाली संख्या है, उसके वर्गशाला का इस राशि में नहीं आएगी धारा में।
अच्छा,
दो वर्ग का कोई दो वह का स्थान ही नहीं है कुछ इस राशि में। दो वह इज नथिंग, क्योंकि वह क्या कि वह वर्ग आ जाएगा, वह रेस्ट फोर आएगा, वह रेस्ट आठ आएगा। दो वह की कुछ वैल्यू नहीं यहाँ पर। चलो आगे है ना, ये कृति ये धारा में मैं आपको बता रही थी। ये बातें सब आने वाली इसी के अंदर, दोनों भी समान है, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। पेज नंबर 62 दोबारा विशेषात पढ़ते। प्रतरावली से, प्रतरावली ने जघन्य असंख्याता संख्यात, असंख्यात स्थान आगे जाकर अद्धा पल्ले की वर्गशाला का ही उत्पन्न होती है। यानी वह उस धारा में आएगा विशेष स्थान पर। अब उस वर्गशाला का जो राशि है उसकी जितनी वैल्यू थी उसको वर्ग 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 करते जाओ, असंख्यात स्थान आगे जाने पर अर्धच्छेद राशि है किसकी? पल्ले की। और संख्या स्थान नहीं बताया, असंख्या स्थान बताए। उससे असंख्यात स्थान आगे जाकर उसी के प्रथम वर्गमूल की प्राप्ति होती है। विशेषार्थ, विशेषार्थ फिर से पढ़ू क्या? अच्छा विशेषार्थ देखना बराबर। प्रतरावली से असंख्यात स्थान आगे जाकर अद्धा पल्ले की वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती है। उससे असंख्यात स्थान आगे जाकर उसकी अर्धच्छेद राशि उत्पन्न होती है। उससे असंख्यात स्थान आगे जाकर उसी के प्रथम वर्गमूल की प्राप्ति होती है। यानी बीच में असंख्यात असंख्यात स्थान जाते हैं, पर वो उतने असंख्यात नहीं होगी जो वर्गशाला का प्रमाण है। आगे इस प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने पर अद्धा पल्ले की उत्पत्ति होती है। अद्धा पल्ले से असंख्यात स्थान आगे जाकर सूचंगुल उत्पन्न होता है, क्योंकि विरलन राशि के अर्धच्छेद प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर यह राशि उत्पन्न होती है। अभी उसी को बता रहे समझा कर। यहाँ सूचंगुल का प्रमाण उत्पन्न करने के लिए देय राशि पल्ल है और विरलन राशि पल्ल के अर्धच्छेद है। यानी ये जरूरी नहीं कि देय राशि और विरलन राशि दोनों समान हो। फिर से सूचंगुल कैसे उत्पन्न होता है, उसकी विरलन राशि क्या है और देय राशि क्या है? तो देखो यहाँ सूचंगुल का प्रमाण उत्पन्न करने के लिए देय राशि पल्ले यानी पल्ले गुणा पल्ले गुणा पल्ले गुणा करना है। कितने बार करना है? तो कहेंगे विरलन राशि उसकी क्या है, तो कहते विरलन राशि पल्ले के अर्धच्छेद। यानी विरलन राशि किसके, विरलन के हमने छह, छह का अर्थ होता है पल्ले के अर्धच्छेद, ये उसकी संदृष्टि है। पल्ले के अर्धच्छेद बार पल्ले को लिख कर आपस में गुणा करना, जैसे हमारे लिए पल्ले के बदले 16 लेते हैं, हमारी देह राशि 16 है, 16 को कितने बार रखना है उसके अर्धच्छेद बार, 16 को 16 के अर्धच्छेद है 4, तो 4 बार लिख के हम गुणा करेंगे, यह है हमारी देह राशि और यह है हमारी विरलन राशि। विरलन राशि कितनी है, 16 के अर्धच्छेद प्रमाण है
4
है। ये ख्याल में आई बात,
इसमें क्या करना है, पल्ले का होता है बाद में गड़बड़
होता है, इसीलिए छोटी संख्या लेनी, क्योंकि हम डायरेक्ट उसका विजुलाइज कर सकते हैं, वो पल्ले कहने से उसके अर्धच्छेद कितने होंगे ऐसा ख्याल नहीं आता। जैसे 16 ये हमारी देह राशि है और विरलन राशि उसके अर्धच्छेद प्रमाण है, और 16 16 16 16 के तो पनठी आ जाएगी, ऐसे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ 16 के बदले पल्ले लिखना, पल्ले 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 कितने बार, तो कहते हैं पल्ले के अर्धच्छेद बार। और हमें एक फॉर्मूला मिला था कि हमारी पल्ले के आगे हम पल्ले को इतनी बार रखे, तो आगे कितने स्थान जाना पड़ेगा, तो जो विरलन राशि है उसके अर्धच्छेद बार आगे जाना पड़ेगा, फिर से 16 का आसरा लेते हैं, वो निकलने वाली विरलन और देय से निकलने वाली राशि, हमारा विरलन है 4, हमारी देय राशि है 16, अब पल्ले के बदले 16 लेते हैं और पल्ले के अर्धच्छेद के बदले हम 4 लेते हैं, पल्ले हमारी राशि है, उसके कितने स्थान आगे जाने पर हमने अंगुल मिलना है, ये हमारा पल्ले है और हमें अंगुल देखना है कौन से स्थान पर आएगा। पल्ले के बदले हमने देखा है 16 को, 16 के अर्धच्छेद बार पल्ले को, पल्ले के अर्धच्छेद बार लिखकर आपस में गुणा करना है तो अंगुल आएगा।
पल्ले रेस टू
अभी 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 कुछ बोलो मत, बोलो मत, मैं जो बताना चाहती हूँ सुनो, हमने पल्ले को 16 मान लिया है, पल्ले के अर्धच्छेद होते 16 के अर्धच्छेद 4, तो पल्ले को पल्ले के अर्धच्छेद बार लिखकर गुणा करना, ये है देय राशि, ये विरलन राशि, तो अंगुल आएगा। अभी हमने वो एक अभी अभी शुरुआत में एक हमने सूत्र यानी उसका नियम पढ़ा था, कितने स्थान आगे जाने पर, ये 16 के कितने स्थान आगे जाने पर ये हमारी अंगुल राशि आ जाएगी। तो अभी अभी अपने इसमें ही करते, तो हमारी विरलन राशि है 4 के अर्धच्छेद है 2, तो हमारी जो 16 नंबर 16 राशि है तो उसके कितने स्थान आगे जाने पर हमारी वो अंगुल की राशि आ जाएगी। पल्ले 16 माना है और हमारे यहाँ अंगुल आता है वो पनट्टी प्रमाण, तो 4 का अर्धच्छेद है 2, तो उतने वर्ग स्थान आगे जाने पर हमारा अंगुल आएगा यानी पनट्टी आएगी। देखो ये नियम है, जो राशि विरलन और देय से आती है, हमारी विरलन राशि है 4 और देय राशि है 16, और देय राशि हमने यहाँ द्विरूप वर्ग धारा में रखी उसको, अभी जो राशि ये द्विरूप वर्ग धारा में है उसी को हमने यहाँ देय राशि बनाई है, और विरलन कौन सी है, एक 4 बार विरलन किया, तो अभी जो संख्या आएगी गुणा करके वो इसी द्विरूप वर्ग धारा में कितने स्थान आगे जाकर आएगी, तो जो विरलन राशि है हमारी 4 है उसका अर्धच्छेद कितना है 2, तो 16 के आगे 2 स्थान जाने पर, क्योंकि 16 256 और पन्नटी वो राशि आती है, ऐसे ही अभी पल्ले पर घटित करना, पल्ले को हमको लिखना है कितनी बार, पल्ले के अर्धच्छेद बार, मैंने पल्ले को हमको पल्ले के अर्धच्छेद बार, उसकी विरलन राशि है 6, अर्धच्छेद बार लिखना है, तो पल्ले के आगे पल्ले जिस द्विरूप वर्ग धारा में है उसके आगे और कितने स्थान जाने पड़ेंगे? तो कहते पल्ले के अर्धच्छेद का अर्धच्छेद बार, तो अर्धच्छेद का अर्धच्छेद बार भी शलाका होती है, ख्याल है? तेने पल्ले हमारे द्विरूपर्ग स्थान में, द्विरूपर्ग धारा में पल्ले हमें यहाँ मिला, उसके आगे कितने स्थान जाने पड़ेंगे तो अंगुल आएगा उसके अर्धच्छेद के अर्धच्छेद बार, यानी जो पल्ले की वर्गशाला का जो थी हमने वह मानी थी, उतने ही वह स्थान आ जाएंगे आगे, यानी दो वह स्थान जाएंगे तब जाके अंगुल मिलेगा। यानी जितने स्थान जाकर पल्ले आया था उतने ही अंगुल आगे, इतने ही स्थान जाने पर एस टू छ
मैंने भी
कोई
बताया,
हाँ यानी 16:4 पनठी आई ऐसे पर एस टू पल्ले के अर्धच्छेद इज इक्वल टू अंगुल, अंगुल आएगा ना, ये डायरेक्ट संख्या आई, पर हमको उसके वर्गशाला का निकालनी थी कि कितने वर्ग स्थान जाने पर आएगी,
कितने स्थान जाने पर
हाँ, यानी उसके उसके अर्धच्छेद, क्योंकि हमारी विरलन राशि अर्धच्छेद है और यहाँ फॉर्मूला क्या है, देह राशि जिस स्थान पर है उसी देह राशि को विरलन राशि प्रमाण लिखकर जो गुणकार आता है तो कितने स्थान आगे जाकर आता है, तो जो हमने तो जो विरलन राशि बनाई, हमारी विरलन राशि क्या है अर्धच्छेद, वो विरलन राशि का और अर्धच्छेद निकालो तो क्या होगा उसकी वर्गशाला का, तो पल्ले की जो वर्गशाला का है उतने ही स्थान आगे जाने पर अंगुल आता है जिसको हम सूच्यंगुल कहते हैं, यानी वो कितना बड़ा असंख्यात होगा, हमें अंगुल नहीं इतना लगता है और पल्ले नहीं इतना बड़ा लगता है, वहां तो रोमखंडों को गिना था और यहाँ तो प्रदेशों को गिनना है, संख्या बहुत बड़ी है ये। देखो अभी यहां से पढ़ेंगे, विशेषांक की चौथी लाइन, ये प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने पर आधा पल्ले उत्पन्न होते, ये मिला कि नहीं मिला? हाँ चौथी लाइन, आधा पल्ले से असंख्यात स्थान आगे जाकर सूच्यंगुल उत्पन्न होता है, उसका कारण बताए, क्योंकि विरलन राशि के अर्धच्छेद प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर यह राशि उत्पन्न होती है, ये फॉर्मूला है। हाँ यहीं पर, यहाँ वो इन्वर्टेड पूरा करो, उत्पन्न होती है के बाद इनटू इन्वर्टेड वो पूरा कर देना,
विरलन राशि के अर्धच्छेद प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर यह राशि उत्पन्न होती है, सूचक भी
विरलन राशि के अर्धच्छेद प्रमाण, विरलन राशि अर्धच्छेद थी इसलिए अर्धच्छेद का अर्धच्छेद हुआ, विरलन राशि हमारी अर्धच्छेद है, अभी वो बताएंगे आगे कि अंगुल की विरलन राशि क्या है, तो पल्ले के अर्धच्छेद उतनी बार पल्ले को लिखना है, विरलन राशि का अर्धच्छेद कहा, पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण नहीं कहा, क्योंकि विरलन राशि इटसेल्फ पल्ले का अर्धच्छेद है।
अच्छा आगे बताए,
देखो यहाँ ये तो पहले उन्होंने एक रूल बताया कि जो राशि देय और विरलन से उत्पन्न होती है भले वो समान हो न समान हो उससे कुछ लेना देना नहीं, तो देय और विरलन से उत्पन्न हुई राशि है तो वो देय राशि के आगे कितने स्थान जाने पर वो मिलेगी हमको, तो जो विरलन राशि है उसके अर्धच्छेद प्रमाण आगे जाना है, यहाँ हमारी देय राशि तो पल्ले है पन विरलन राशि पल्ले नहीं है, पल्ले के अर्धच्छेद है, अभी जो पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण विरलन राशि है उसका और एक बार अर्धच्छेद करो, उतने आगे स्थान जाएंगे तो अंगुल आएगा। अब यहाँ ये बात बता रहे अभी आगे, यहाँ सूच्यंगुल का प्रमाण उत्पन्न करने के लिए देह राशि पल्ले है और विरलन राशि पल्ले के अर्धच्छेद है तथा विरलन राशि के अर्धच्छेद प्रमाण वर्गस्थान आगे जाकर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है, इस नियम के अनुसार विरलन राशि वो पल्ले के बाद कॉमा पूरा किए हैं, ब्रैकेट पूरा किए ना, तो विरलन राशि पल्ले के अर्धच्छेद, यहाँ वो ब्रैकेट होना चाहिए था, अर्धच्छेद के बाद वो ब्रैकेट पूरा करना है। यहाँ क्या लिखना चाहते थे, विरलन राशि के अर्धच्छेद, यहाँ कहना है पल्ले के अर्धच्छेद के अर्धच्छेद। समझ में आती बात? फिर से आपके पुस्तक में पल्ले के बाद ब्रैकेट पूरा हुआ है हा? तो पल्ले के बाद को ब्रैकेट पूरा नहीं करना, पल्ले के अर्धच्छेद के बाद वो ब्रैकेट पूरा करना, क्योंकि हमारी विरलन राशि, हाँ क्योंकि हमको विरलन राशि बनानी है ना। विरलन राशि क्या है? पल्ले के अर्धच्छेद। हाँ, के अर्धच्छेद के बाद के बाहर छोड़ना, क्योंकि वो ब्रैकेट अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा होगा विरलन राशि के अर्धच्छेद असंख्यात है ना। तो विरलन राशि के बदले उन्होंने उसकी वैल्यू बताई, अर्धच्छेद प्रमाण, पल्ले के अर्धच्छेद के अर्धच्छेद प्रमाण। तो हमने पहले ही देखा था पल्ले के अर्धच्छेद का अर्धच्छेद वो भी असंख्यात है, क्योंकि अर्धच्छेद का अर्धच्छेद ये अभी उन्होंने बताया नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पहले अपना हुआ है इसका अभ्यास, इसलिए बता रही हूँ। तो हमने देखा था पल्ले कितने वर्ग स्थान, प्रतरावली के आगे असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्गशाला का आई थी, यानी पल्ले की वर्गशाला का इटसेल्फ असंख्यात है। तो पल्ले के आगे असंख्यात स्थान जाने पर अंगुल आता है, अतः पल्ले के ऊपर असंख्यात वर्ग स्थान जाकर सूच्यंगुल प्राप्त होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उपज यदि जो राशि गाथा 73 के अनुसार, अभी हम पढ़े नहीं, वो गाथा आएगी, इस द्विरूप वर्ग धारा में सूच्यंगुल की वर्गशलाकाएं और अर्धच्छेद नहीं पाए जाते, क्योंकि सूच्यंगुल की उत्पत्ति देय एवं विरलन राशियों द्वारा प्राप्त हुई है। वो भले वो देय विरलन समान हो या असमान हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो जो राशियां देय से और विरलन से प्राप्त होती है उनके अर्धच्छेद और वर्गशलाकाएं इनकी धारा में नहीं आती। आगे इस सूच्यंगुल का एक बार वर्ग करने पर प्रतरांगुल उत्पन्न होता है, प्रतर यानी उसका स्क्वायर। प्रतरांगुल से असंख्यात स्थान आगे जाकर देखो, प्रतरांगुली से हमने शुरुआत की थी, प्रतरावली का अर्थ है असंख्यात असंख्यात, जघन्य असंख्यात असंख्यात, उससे असंख्यात स्थान आगे जाने पर वर्गशाला का हुई थी, यानी पल्ले की वर्गशाला का ही असंख्यात असंख्यात है, पल्ले बहुत बड़ा है और उससे अंगुल कितना बड़ा होगा,
और उससे जगत से भी अंगुल ये भी
असंख्यात, वो तो बहुत बड़ी संख्या है। तो प्रतरांगुल से असंख्यात स्थान आगे जाकर जगत श्रेणी का घनमूल उत्पन्न होता है, यानी जगत श्रेणी के घनमूल का घन करने से जगत श्रेणी उत्पन्न, जगत श्रेणी ने 7 राज्य सिंगल लाइन में उसको प्रदेशों को रखेंगे तो ये तो बहुत आगे आगे की संख्या है। नोट लिखते हैं, जगत श्रेणी घनधारा में है, द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है। घनधारा ने द्विरूप घनधारा जिसको कहेंगे, वो घनों की धारा नहीं है, है तो वर्गों की धारा, पर स्टार्टिंग विथ 2 के घन से उसके वर्ग से शुरू हुआ था, यहाँ तो उसका घनमूल आता है, जगत श्रेणी का घनमूल इस धारा में है, विरूप वर्ग धारा में। आगे बढ़ेंगे 69 नंबर। ये सारे जो दो और दो वो ये जो इतनी क्लैरिटी है ना, तो हमने वो सारे संदृष्टि में भी देखे थे, तो इस कारण वो बहुत क्लियर है। यहाँ तो अभी तक नहीं आई वो बात, मैंने आपको बताया ना अर्धच्छेद के अर्धच्छेद शलाका वर्गशलाका होती है, या पल्ले की वर्गशलाका वो मानेंगे तो अंगुल की वर्गशलाका दो वो होती है। अभी वो बात अभी तक यहाँ नहीं आई, हमने वो जीवकांड में पढ़ी थी और जीवकांड में इसी के आधार से लिए है सारे। आगे 69 नंबर को पढ़ेंगे। तिविह जहन्नानंतम वग्गसलादलचिदीसगादिपदम जीवोपोगलकाला सेढ़ी आगासतपदरम त्रिविधम जगन्यानंतम वर्गशलादलच्छेदास्वकादिपदम जीवः पुद्गलकाल श्रेण्याकाशम तत्प्रतरम। आगे के और भी कुछ स्थान बता रहे हैं। गाथार्थ, जगत श्रेणी के घनमूल से असंख्यात स्थान, असंख्यात स्थान, एक बार नहीं बताया, असंख्यात स्थान असंख्यात स्थान आगे जाकर तीनों जघन्य अनंतों में से जघन्य परितानंत की वर्गशलाकाएं। देखो है तो जघन्य अनंत, परंतु उसकी वर्गशलाकाएं असंख्यात में जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी तो अनंत शुरू हुआ है तो उसका वर्ग स्थान असंख्यात सर्व स्थान पर होगा। देखो तीनों जघन्य अनंतों में से, तीनों में से जघन्य परितानंत, तीन कौन से, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, उनमें से सभी के जघन्य नहीं, तीनों में से ये परितानंत को लेना है। हाँ, तीन अनंतों में से, यानी तीन जघन्य अनंतों में से भी कौन सा जघन्य अनंत लेना है, जघन्य परितानंत, उसकी वर्गशलाकाएं, उसके अर्धच्छेद, उसके प्रथम वर्गमूल। यानी ये संख्या आगे स्थान जाने की वो उसकी उत्पत्ति होती, इतना ही बताना था। कहां तक आए थे हम, जगत श्रेणी के घनमूल तक, तो उसके असंख्यात स्थान असंख्यात स्थान आगे जाकर तीनों जघन्य अनंतों में से जघन्य परितानंद की वर्गशलाकाएं, अर्धच्छेद, प्रथम वर्गमूल, और उसके बाद क्या आएगा, जघन्य परितानंत आता है। यानी वो उसके स्थानों की संख्या बता रहे, संख्यात संख्यात स्थान जाने पर ऐसा ही आता है। हाँ, उसके बाद वो संख्या थी। हाँ, यहाँ पर भी ऐसे, तो जघन्य परितानंत तक आ गए हम, यानी जघन्य परितानंत भी इस विरूप वर्गधारा में आया, पर वो जघन्य परितानंत कौन से स्थान पर है, तो जो असंख्यातवे स्थान पर है वो असंख्यात की संख्या इस विरूप वर्गधारा में आई, उसके अर्धच्छेद की जो संख्या वो भी इस विरूप वर्गधारा में आई, उसका प्रथम वर्गमूल तो इस धारा में आया ही आया, वो स्वयं भी इस धारा में आया। उसकी संख्या की बात हम धारा में बता रहे हैं, पर उसका वर्गस्थान कितना है, तो असंख्यात स्थान। अब जघन्य युक्तानंत, ये आगे आगे की कुछ संख्याएं बता रहे हैं। हाँ, जघन्य अनंतानंत, ये सब द्विरूप वर्ग धारा की संख्याएं बता रहे हैं आगे। तो आगे मध्यम अनंतानंत कितने स्थान जाने पर जीव राशि आ जाएगी, उसके आगे पुद्गल राशि है, तीन काल के समय है, काल कहने से द्रव्य नहीं लेना, तीन काल के समय। हाँ, कितना बड़ा मध्यम अनंतानंत है, बहुत बड़ा है वो, जघन्य अनंतानंत कहीं नहीं उसके सामने। आगे आगे सारे मध्यम अनंतानंत के ही भेद है, पर वो सारे जो राशियां बताएंगे उसमें से जीव राशि पहले स्थान पर, उसके कितने स्थान आगे जाकर अनंतानंत स्थान आगे जाकर पुद्गल राशि आएगी, अनंतानंत स्थान, उसके अनंतानंत स्थान जाके काल के समय, उससे अनंतानंत स्थान जहाँ पर आकाश के, वो आकाश के श्रेणी, घन आकाश नहीं, श्रेणी और प्रतर इस धारा में आएगा। श्रेणी का घन तो उसमें आ जाएगा, विरूप घन धारा में आएगा, उसकी उत्पत्ति होती है। यानी हमें मालूम है ऐसे कुछ यहाँ संख्या या फिगर्स बताइए, आगे चलेंगे गाथार्थ। नहीं नहीं गाथार्थ हो गया, विशेषार्थ। जगत श्रेणी के घनमूल से असंख्यात स्थान आगे जाकर जघन्य परितानंत की वर्गशाला का राशि उत्पन्न होती। परितानंत तो बहुत आगे जाके उत्पन्न होगा। हाँ, और यहाँ जगत श्रेणी का घनमूल है, द्विरूप वर्गधाना में ही उसका घनमूल आता है ना। नहीं समझे, देखो यहाँ 4 16 आते हैं, 256 आते हैं, द्विरूप घन धारा में 4 का घन 64 आता है। अभी इसके वर्ग वर्ग करते जाओ, और इसका वर्ग 4096 आता है, इस तरह से। तो द्विरूप वर्ग धारा में जो जिस स्थान पर संख्या है उसका घन द्विरूप घन धारा में आता है। यहाँ पर हमने आकाश की श्रेणी ली तो यहाँ घन आकाश होगा, यहाँ जगत श्रेणी ली तो यहाँ क्या लेंगे, अभी यहाँ घन संख्या, घन करने के बाद जगत श्रेणी इस धारा में आती है,
घनमूल लेना,
तो ये जगत श्रेणी का घनमूल आएगा। घनमूल 64 संख्या यहाँ आती है तो इस धारा में क्या आएगा, 64 का घनमूल। वर्गमूल क्या करते, वर्गमूल तो समझते हैं ना, उसका रूट। हाँ, अभी इसका घनमूल, यानी कितनी तीन संख्या, यानी कोई संख्या तीन बार गुणा करके ये संख्या आती है, 4 × 4 × 4 64 होते हैं। तो 64 संख्या यदि हमारी घनधारा में आती है तो उसका घनमूल 4 संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आएगा। जगत श्रेणी हमारी इस धारा में आती है, उसका घनमूल इस धारा में आएगा। देखो फिर पढ़ते हैं विशेषार्थ। जगत श्रेणी के घनमूल से आगे, घनमूल बताया, असंख्यात स्थान आगे जाकर जघन्य परितानंत की वर्गशाला का राशि उत्पन्न होती है। जैसे हमने देखा था जघन्य असंख्यात की वर्गशाला का तो संख्यात होती है, इसे जघन्य में जघन्य अनंत की वर्गशाला का तो असंख्यात होगी। इससे असंख्यात स्थान आगे जाकर उसी की अर्धच्छेद राशि उत्पन्न होती है, यानी जघन्य परितानंत की अर्धच्छेद राशि। उससे असंख्यात स्थान आगे जाकर उसी जघन्य परितानंत की प्रथम वर्गमूल प्राप्त, उसका प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है। और इस प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने पर जघन्य परितानंत राशि की उत्पत्ति होती है। जघन्य परितानंत से असंख्यात स्थान आगे जाकर जघन्य युक्तानंत उत्पन्न होता है, अर्थात विरलन देय क्रम से उत्पन्न होने वाली राशि, विरलन राशि के अर्धच्छेद प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर उत्पन्न होती है। अब यहाँ असंख्यात क्यों कहा, अनंत क्यों नहीं कहा, इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या, जघन्य युक्तानंत कैसे प्राप्त होता है, तो जघन्य परितानंत को जघन्य परितानंत बार लिख के आपस में गुणा करना है। विरलन राशि भी जघन्य परितानंत है, देय राशि भी जघन्य परितानंत है, तो हमारा फॉर्मूला वही है कि देय राशि के आगे यानी जघन्य अनंतानंत जिस स्थान पर है उसके कितने वर्ग स्थान आगे जाने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि जो विरलन राशि भी जघन्य परितानंत है उसके अर्धच्छेद कितने हैं, तो असंख्यात है, तो उसके असंख्यात स्थान ही आगे जाना पड़ेगा। यहाँ लिखा ना, विरलन देय क्रम से उत्पन्न होने वाली राशि विरलन राशि के अर्धच्छेद प्रमाण वर्गस्थान आगे जाकर उत्पन्न होती है। इस नियम के अनुसार यहाँ जघन्य युक्तानंत का प्रमाण लाने के लिए देय राशि जघन्य परितानंत और विरलन राशि भी जघन्य परितानंत ही है। विरलन राशि यानी जघन्य परितानंत के अर्धच्छेद असंख्यात है, अतः असंख्यात वर्गस्थान जाने आगे जाकर जघन्य युक्तानंत का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ पर भी पूर्वोक्त प्रकार से वर्गशलाकादि का निषेध है, क्योंकि हमने ये बात देखी थी कि जो राशि विरलन और देय से प्राप्त होती है उसकी वर्गशलाका इस द्विरूप वर्ग धारा में नहीं होती, उसकी अर्धच्छेद भी नहीं होती। हाँ, उसका प्रथम वर्गमूल होगा। इस जघन्य युक्तानंत का एक बार वर्ग करने पर जघन्य अनंतानंत की उत्पत्ति होती है। इससे अनंत स्थान आगे जाकर, कितने स्थान? अनंत स्थान आगे जाकर, यानी देखो हमने वो तो जघन्य परितानंत से जघन्य युक्तानंत तक तो असंख्यात स्थान गए थे, फिर भी वो कितना बड़ा अनंत हुआ था। अब कहते वो जघन्य जो अनंतानंत है वो द्विरूप वर्ग धारा में जो आया है उससे अनंत स्थान आगे जाकर, यानी उसके कितने बार वर्ग, वर्ग का वर्ग अनंतो बार, तब जाके जीवराशि की वर्गशाला का है, जीवराशि नहीं आई, यानी जीवराशि की वर्गशाला का। अभी हमने देखा ना असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर वो पल्ले आया था, उसके उतने के जाने पर फिर वो प्रत्रावली, हाँ वो अंगुल आया था, अवली भी नहीं, अंगुल आया था, उसके कितने कितने स्थान जाने पर वो सब हमने देखी, वो अनंत वगैरह अलग अलग होते हैं। अब कहते ये जो जघन्य अनंतानंत मिला हमको, उससे अनंतानंत स्थान जाने के बाद जीव राशि की वर्गशाला का आई, यानी जितने अनंतवे स्थान पर वो जीव राशि पाई जाएगी उसका प्रमाण वो द्विरूप वर्ग धारा में आया, वो तो वर्गशाला का मिली अभी, उसके कितने स्थान जाने पर फिर उसके अर्धच्छेद मिलेंगे। हाँ, अर्धच्छेद, उससे अनंत स्थान आगे जाकर उसी के अर्धच्छेद, और उससे अनंत स्थान आगे जाकर उसी जीव राशि का प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है। और इस प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने से जीव राशि के प्रमाण की उत्पत्ति होती है। तो जीव, हम जीव अनंत भूतकुल अनंत अनंत, हम ऐसा ही वो दो रटते हैं ना। अरे उसके वर्गशाला का वाला अनंत ही कितना बड़ा है।
तो
अरे कुछ नहीं, उसके आगे,
उसके आगे भव्य जीव तो बहुत ज्यादा।
ये मिल के आया, पर अभव्य जीव इसमें से कितने हैं? तो जगन्य युक्तानंत, वो कुछ नहीं उसके आगे। हाँ, सिद्ध राशि भी उससे कितनी बड़ी है। हाँ, अभव्य उनसे अनंत गुणी है। और सिद्ध राशि से अनंत अनंत गुणे तो जीव राशि, टोटल जीव राशि। इस प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने से जीव राशि के प्रमाण की उत्पत्ति होती है। अब जीव राशि जिस स्थान पर है, द्विरूप वर्ग धारा में जहां पर है जीव राशि, उससे अनंत स्थान आगे जाकर अभी उसकी वैल्यू कितनी बड़ी होती है, पुद्गल राशि की वर्गशाला का है। पुद्गल राशि नहीं आई, उसकी वर्गशाला का है, उससे अनंत स्थान आगे जाकर उसी के अर्धच्छेद, और उससे अनंत स्थान आगे जाकर उसी के प्रथम वर्गमूल की उत्पत्ति होती है। इस प्रथम मूल का एक बार वर्ग करने पर पुद्गल राशि का प्रमाण उत्पन्न होता है। और इतने सारे को वो एक एक को अलग अलग भिन्न भिन्न केवली एक समय में युगपत जान रहे, तीन काल की पर्याय, अभी तो काल के समयों को नहीं लिया। तीन काल की पर्याय में काल के समय जितने सब जीवों की अपनी अपनी पर्याय होगी ना, सब द्रव्यों की। आगे देखते हैं, पुद्गल राशि के प्रमाण से अनंत स्थान आगे जाकर काल के समयों की वर्गशलाकाएं, यानी उसका स्थान ही इतना अनंत स्थान होगा, इतने स्थान जाने पर होगा, उससे अनंत स्थान आगे जाकर उसी के अर्धच्छेद, और उससे अनंत स्थान आगे जाकर उसी के प्रथम वर्गमूल की उत्पत्ति होती है। इस प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने पर काल के जितने समय है उनका प्रमाण प्राप्त होता है। ये सारी जीव राशि पुद्गल राशि सबन वो तो अक्षय अनंत राशियां हैं। वो कभी वो सब मोक्ष चले जाएंगे तो कहते ऐसा नहीं होने वाला है। काल समय प्रमाण से अनंत स्थान आगे जाकर श्रेणी रूप आकाश की वर्ग शलाकाएं। अब ये श्रेणी रूप आकाश कहा, जगत श्रेणी नहीं कहा, आकाश द्रव्य की श्रेणी ली। आकाश तीन डायमेंशनल है तो उसको सम डायमेंशन हम मानेंगे, तो उसकी श्रेणी रूप आकाश की वर्ग शलाकाएं, शलाका वो भी आकाश नहीं आया अभी, उससे अनंत स्थान आगे जाकर उसी के अर्धच्छेद, उससे अनंत स्थान आगे जाकर उसी आकाश श्रेणी का प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है।
आकाश का प्रथम, आकाश की श्रेणी यहाँ पे,
आकाश की श्रेणी यहीं पर है और उसका घन है ना, पूरा आकाश तो घन धारा में होगा। इस प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने से आकाश श्रेणी उत्पन्न होती है और आकाश श्रेणी का एक बार वर्ग करने से प्रतराकाश उत्पन्न होता है। देखो हमने कहाँ तक आए, कितने अनंतानंत आगे चले गए। अब यहाँ पढ़ते हैं 70 नंबर को पढ़ेंगे। धम्मा धम्मा गुरु लघु इग जीवा गुरु लघु सहोंति तदो सुहमणि पूर्णनाने अवरे अविभाग परिच्छेदा धर्मा धर्मा गुरु लघो एक जीवा गुरु लघो भवन्ति ततः सूक्ष्म निगोदा पूर्ण ज्ञाने अवरे अविभाग प्रतिच्छेदा। देखो प्रतराकाश से यानी प्रतराकाश के जो संख्या है प्रदेशों की हमने देखा था, उत्तरोत्तर ने आगे आगे अनंत स्थान आगे आगे जाकर क्रमशः धर्म धर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद और एक जीव के अगुरु लघु के अविभाग प्रतिच्छेदों की प्राप्ति होती। उत्तरोत्तर का यानी धर्म अधर्म के समान है तो वो जिस स्थान पर होगी उससे अनंतानंत स्थान आगे जाने पर जीव के एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या आती है। ये तो अगुरु लघु गुण के बताए। पुनः अनंत स्थान आगे जाकर सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पर्याप्त जीव के जघन्य पर्याय नामक श्रुत ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की उत्पत्ति होती है।
ये भी
देखो ना वो तो कौन सा सबसे मिनिमम वाला ज्ञान, उसमें इतने अविभाग प्रतिच्छेद है। वहां तो गुण की बात बताई है क्योंकि गुण में तो अगुर लघु गुण का तो परिणमन तो हमेशा ही अनादि से वो तो निर्मल परिणमन ही होता है, उसमें कोई विभाव रूप नहीं होती बात, इसलिए वहाँ पूरे गुण के प्रतिच्छेदों की बात है। हाँ 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 अनंत अनंत गुण है वो तो बहुत बार हमने इसमें भी जीवकांड में भी बात की आई थी। हाँ अभी कभी कभी बात कभी स्ट्राइक हो जाती है ना, और परसों बात आई थी ना ये उसमें ये इतने मिलाना करके तभी ये बात हमने पढ़ी तभी। हाँ असंख्यात की जो तीन बार सलाकात्र निकाले थे उसमें भी ये धर्म अधर्म के अगुरु लघु के अविभाग प्रतिच्छेद मिलाए थे हमने, एक जीव के अविभाग प्रतिच्छेद भी मिलाए थे उसके अंदर। अनंतों की संख्या में आए थे ना वो अनंतों का। हाँ तो कहते जीव के जघन्य पर्याय नामक श्रुत ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की उत्पत्ति उत्पत्ति होती है नहीं वो संख्या उस स्थान पर आती है, द्विरूप वर्ग धारा में उनकी संख्या आती है, बस इतना कहना है। विशेषण प्रतराकाश से अनंत स्थान आगे जाकर धर्म अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों की उत्पत्ति होती है, उससे अनंत स्थान आगे जाकर एक जीव के अगुर लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों की उत्पत्ति होती है, उससे अनंत स्थान आगे जाकर सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पर्याप्त जीव के पर्याय नामा जगन्य लब्धि अक्षर, उसका नाम ही लब्धि अक्षर। श्रुत ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण उत्पन्न होता है। यानी हमें इस विरूप वर्ग धारा में कौन कौन सी आगे आगे चलकर अनंत संख्या वाली संख्या आती है ये बात बताए। लास्ट में तो केवल ज्ञान है ही, तो उसके पहले भी हमें मालूम है, इससे कुछ भेद बता रहे हैं। 71 नंबर, अवरा खाई अलद्धि वग्ग सलागा तदो सगद्ध छिदि अड़सग छप्पन तुरियम तदियम विदियादि मूलम च अवराक्षायिकलब्धि वर्गशलाका ततस्वकार्दचिदि अष्टसप्तषट्पञ्चतुरीयम् तृतीयम् द्वितीयादिमूलम् च तथा उससे अनंत स्थान आगे जाकर। ये सूक्ष्म निगोद के जो ज्ञान के अविभाग प्रति थे उसी के आगे ची बांगा चले। जघन्य क्षायिक लब्धि की वर्गशलाका है। ये जघन्य क्षायिक लब्धि कब प्राप्त होती है अश्विन भाई? चौथे गुण स्थान में जब शायिक समय पर प्राप्त होता है। तो उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है तो उसको यहाँ जघन्य क्षायिक लब्धि कह दिया। तो कहते हैं जघन्य क्षायिक लब्धि की वर्गशलाकाएं, क्षायिक लब्धि की भी नहीं, उसका प्रमाण नहीं, उसकी वर्गशाला का, उस संख्या की वर्गशाला का। फिर अनंत स्थान जाने पर उसके अर्धच्छेद मिलेंगे आगे, और अनंत स्थान जाने पर अभी उल्टे क्रम से आए हैं, आठवां वर्गमूल, फिर उसका वर्गमूल का वर्ग करो तो सातवां वर्गमूल, सातवें वर्गमूल का वर्ग करो तो छठा वर्गमूल, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, और बाद में एक क्षायिक लब्धि आएगी। आठवां, हाँ, बाद में प्रथम वर्गमूल के बाद क्षायिक लब्धि आएगी उसके अविभाग के पीछे। देखो इसका 65 पेज पर आते हैं। विशेषार्थ, जघन्य लब्धि अक्षर श्रुत ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों से अनंत स्थान आगे जाकर तीर्यंच गति में असंयत समय दृष्टि जीव के, तीर्यंच वाले को लिया वो भी, जघन्य क्षायिक सम्यक लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण की प्राप्ति होती है।
क्षायिक सम्यक तो मनुष्य में ही प्राप्त कर सकते हैं।
हाँ, परंतु वो तो प्राप्त करके तीर्यंच में जाएगा,
वहाँ पे उसका कम हो जाएगा,
कम नहीं हो जाता है?
नहीं, क्योंकि यहाँ पे जघन्य स्थान पे
जघन्य तीर्यंच गति को लिया, परंतु चौथे गुण स्थान वाले क्षायिक समय दृष्टि इतना भी ले लो ना, तीर्यंच गति में उसमें भी अविभाग प्रतिच्छेदों की जो हीना दिखता होगी, यहाँ तो तीर्यंच गति को लिया है, तो उससे अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान की वर्गशलाकाओं का प्रमाण उत्पन्न होता है। एक केवल ज्ञान कहाँ लिया? क्षायिक लब्धि, अवरा खाइए लब्धि वर्गशलाका तदो सगद्धचिदि। क्षायिक लब्धि के कहाँ आया उन्होंने? उनके अविभाग प्रतिच्छेद, उसके वर्गशाला का नहीं आया, अविभाग प्रतिच्छेद नहीं आया। अवरा खाइए लब्धि वर्गशाला का तो सगद अच्छी थी। अब ये सेकंड लाइन में उन्होंने वो केवल ज्ञान के ले लिए, देखो संस्कृत में पढ़ेंगे। अवरा ततो अनंत स्थानानि गत्वा तिर्यक गति असंयत सम्यक दृष्टौ जघन्य क्षायिक सम्यक रूप लब्धे हे अविभाग प्रतिच्छेदाः। ततो अनंत स्थानानि गत्वा अच्छा जगन्नाथ शाही सम्यक पर क्या अभी वर्गशाला का नहीं लेना है, जगन्नाथ शाही की लब्धि लेना है। ये की डाला है ना, ये वर्गशाला का जो है ना वो केवल ज्ञान की होगी। देखो संस्कृत श्लोक देखो, अवराग शाही की लब्धि, मैंने जघन्य शाही की लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेद यहाँ प्राप्त हो गया। अब यहाँ हम कॉमा देंगे समझने के लिए। अभी उसका संस्कृत पढ़ो देखो, ततो अनंत स्थानानि गत्वा, यानी जो हमने लब्धि अक्षर देखा था उसके अनंत स्थान आगे जाने पर तिर्यक गति में जो असंयत समय दृष्टि के जघन्य क्षायिक सम्यक्त रूप क्षायिक सम्यक्त लब्धि है उसके अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। वो यहाँ 60 विशेषार्थ में बराबर लिखा उन्होंने, विशेषार्थ में जो लिखा है ना देखो, विशेषार्थ देखो 65 पेज पर पहली लाइन, जघन्य लब्धि अक्षर श्रुत ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों से अनंत स्थान आगे जाकर तिर्यंच गति में असंयत समय दृष्टि जीव के जघन्य क्षायिक सम्यक्त लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण की प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ से बराबर जो संस्कृत के अनुसार है, अभी छेदा है बोलते हैं ततो अनंत स्थानानि गत्वा, संस्कृत में पढ़ो सेकंड लाइन, और वर्गशाला का होती है, फिर अर्धच्छेद होते हैं, फिर आठवां सातवां वगैरह वर्गमूल होते हैं। किसका? तो केवल ज्ञान का। वो आगे के 72 नंबर के गाथा में वो बात पूरी होती है। वहां जरा देख लो पहली लाइन, सकृतादि मूल वर्ग, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ वहां पर, यानी यहाँ द्वितीय आदि मूल तक आए थे, द्वितीय आदि मूल यानी पहला मूल हो गया, यानी प्रथम वर्ग मूल हुआ, और उसका सकृत आदि मूल वर्ग, आदि मूल यानी प्रथम वर्ग मूल, उसका वर्ग करने पर केवल ज्ञान आता है। केवलम अंतम प्रमाण ज्येष्ठम इदम, यही प्रमाण सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। यानी यहाँ जो सातवां यानी आठवां सातवां छठवां पांचवां वगैरह जो लिखे ना वो केवल ज्ञान के प्रथम मूल के लिए, विशेषार्थ बराबर बताया है। गाथा में उन्होंने गलती की, क्या की? तथा उसके अनंत स्थान आगे जाकर जघन्य क्षायिक लब्धि प्राप्त होती है, ऐसा लिखना है। गाथार्थ आप में क्या लिखा है? नहीं, जघन्य क्षायिक लब्धि प्राप्त होती है।
नहीं,
क्या जघन्य क्षायिक लब्धि के बाद कॉमा लगाना, यानी जघन्य क्षायिक लब्धि यहाँ पर मिली। अब ये जो वर्गशाला का बताइए वो केवल ज्ञान के वर्गशाला का है। हाँ, कि जघन्य क्षायिक लब्धि प्राप्त होती है, वाक्य लिखो वहाँ, प्राप्त होती है। हाँ, की निकाल दो। उससे अनंत स्थान आगे जाकर, ऐसा लिखो। ये उन्होंने विशेषार्थ में बताया बराबर। क्या होगा? वर्गशाला का है। किसके? केवल ज्ञान के। केवल ज्ञान की वर्गशाला का है। अर्धच्छेद आठवां सातवां छठा पांचवा चौथा तीसरा दूसरा और प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है। ये आगे 72 के साथ इसको अर्थ लगा लो ना, इसका एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान होता है, उसका अर्थ ये किसकी वर्गशाला का, किसके अर्धच्छेद, किसके मूल चल रहे थे, केवल ज्ञान। हम यही रुकेंगे, विशेषात कल फिर पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन भाई।
नमो ओरियंतारम नमो सिद्धानम नमो आजनम नमो उज्जनम नमो लोयत्तपत्तावरम नमो ओरियंतारम नमो सिद्धानम नमो